आज हम सबके समक्ष एक बहुत ही विशिष्ट बाबा के अनमोल रतन आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भाई साहब, आप बचपन से ही ज्ञान के संपर्क में हैं परिवार के होने के कारण, और साथ ही आपने लौकिक रीति से एमडी करके आप बहुत ही ऊंचे पद पर हैं। आपने कई सारे अवार्ड कार्डियोलॉजिस्ट के क्षेत्र में हासिल किए हैं, जैसे FIAE, FCCP, FIMA, MSA आदि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में आपने कार्डियोलॉजिस्ट के आधार पर बहुत ही सुंदर रीति से अपना भूमिका निभाया, और साथ में आपने 95 से ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन का पद भी संभाला, और अभी आपने बहुत सारे इस मुख्यालय हेडक्वार्टर में समय प्रति समय हृदय रोगियों के बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित करते रहते हैं। आपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को एक बहुत ही सुंदर आयाम प्रदान किया है। आपके द्वारा अनेकों शिविर कार्डियोलॉजिस्ट कैड प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे शिविर आयोजित होते हैं, जिसमें हजारों हृदय रोगियों को आपने स्वस्थ बनाकर बाबा से उनके दिल का तार जोड़ा है। तो ऐसे अनेक गुणों से संपन्न आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी से हम सुनेंगे। आप परमात्मा दिल तख्त नसीन बनकर सर्व के दिलों को परमात्मा से जोड़ने वाले दिलाराम के सच्चे दिल तख्त नसीन आत्मा है। आपका आज का विषय है अनुभव की अथॉरिटी। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई,
ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। कहा भी जाता है, जहां ना पहुंचे रवि तभी माना सूरज, जहां तक सूरज की धूप नहीं पहुंचती है वहां पहुंचे कवि। जो कविता लिखने वाले होते हैं ना, वो वहां से भी दूर तक पहुंच जाते हैं, बहुत दिल की गहराइयों में, मन की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और अनुभवी जो होता है वो इतना गहराई में जा सकता है, पर जो 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 अनुभवी होता है, जो अनुभव करता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की मानी गई है, और जिसको एक बार अनुभव हो जाता है जिस भी बात का, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसको वहां से कोई हिला नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बात है, अगर कोई आपको कोई फल है, जैसे वो चीनी है, मान लो आपको, आपने चीनी खाई है और आपको चीनी को आपने टेस्ट करके देखा मीठा है, कई बार खाया है बचपन से, या कोई मिठाई खाई है, कोई फल खाया, और कोई व्यक्ति उसको कहे नहीं ये चीनी तो कड़वी है, तो मान लेंगे क्या कड़वी है? आपने बहुत बार खाई है। तो अनुभव ऐसी चीज है जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता है, अनुभवी कोई समस्या हिला नहीं सकता, कितने भी पहाड़, कितनी भी समस्याएं सामने आ जाए, अनुभव कभी हिल नहीं सकता है। और अभी जो बाबा हमको सिखा रहा है, हम वैसे तो सभी अनुभवी हैं कि नहीं? सभी अनुभवी हैं, सभी देहभान के अनुभवी हैं। अनुभव कैसे होता है? जो चीज हम बार बार करते हैं ना, उसका अनुभव हो जाता है। हम बचपन से देहभान के अनुभवी हैं, 2500 साल से देहभान बहुत है अंदर, नेचुरल नेचर बन गया ना, देहाभिमान के भी अनुभवी हैं, उल्टी बातों के अनुभवी सभी है ना, देहाभिमान के संबंध संपर्क है, माता पिता, भाई बहन है ना, पति पत्नी, बच्चे, इसकी याद तो ऑटोमेटिक, इसके तो अनुभव है ही सबको, है ना, सभी को अनुभव है ना। देवी मन के पदार्थ जो चीजें मेरी हैं इसका भी बहुत पक्का अनुभव है। कोई आपको हजार कही चीज आपकी नहीं है तो आप क्या कहेंगे, मेरी है ना ये, तो ये मेरी है ना। तो अनुभव की अथॉरिटी है ना उस चीज की। क्रोध करने का अनुभव है, लोभ करने का अनुभव है, मोह का अनुभव है, अहंकार का भी अनुभव है, चिंता का अनुभव है, डर का अनुभव है, जल्दबाजी का अनुभव है ना। अनुभव तो बहुत सारे अनुभव और बहुत पक्के हैं। हजार लोग आपको कुछ भी कह दे कि ऐसा नहीं, ऐसा कैसे करो, नहीं, बड़ी मुश्किल से। आज यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि हम ये पुराने हमारे जो स्वभाव संस्कार बन गए हैं उसी से मुक्ति पाने के लिए तो हमको ये करना पड़ रहा है, करते हैं। बाबा आया, बाबा ने हमको नया ज्ञान दिया, नई समझ दी, और इस समझ जो बाबा ने विभिन्न ज्ञान के पॉइंट्स दिए, इतनी मुरलियां हम सुनते हैं बाबा की, कितने सालों सुन रहे हैं, 40 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए, रोज हम ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट सुन रहे हैं। ज्ञान के एक एक पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी हमें बनना है। जो आत्मा के जो 5 गुण हैं, कहते 7 एनर्जी ना आत्मा के अंदर, ज्ञान, पहले तो ज्ञान है, ज्ञान अर्थात ABCD, ज्ञान में 4 एस्पेक्ट है ना, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, पहला ए फॉर आत्मा। तो आत्मा का अनुभव किया है, मैं देह नहीं, इस तो एक को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये सुना तो है बहुत बार, हम सुनाते भी हैं, आधा कला से सुनते सुनाते आए हैं कि तू मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा यहां बैठ के शरीर को चला रही हूं, अगर मैं आत्मा निकल जाऊं तो शरीर की एक को वैल्यू नहीं है। इसको गहराई से अनुभव किया है, इसके अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है, इसके संबंध के इसके अनुभव की अथॉरिटी बने हैं कि बाबा ने कहा मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, हर स्थान पर तुम्हारे साथ हूं, हर कार्य में तुम्हारे साथ हूं, हर कर्म में तुम्हारे साथ हूं, सर्व संबंध से तुम्हारे साथ हूं। क्या बाबा को हमने सर्व एक एक संबंध को बाबा को उस संबंध से अनुभव की अथॉरिटी बने हैं? क्या बाबा को हमने मां के संबंध से अनुभव किया है? क्या बाबा को भी शिव बाबा को भी मां के रूप में यूज करके देखा है कि जब मां की आवश्यकता हो जब बाबा को मां के रूप में यूज कर ले? बाप के संबंध से बाबा को भी यूज करके देखा है? जिनको अनुभव में मां के संबंध का अनुभव, हाथ उठाओ बाबा, जो प्रैक्टिकल में बाबा को मां के रूप में यूज करके देखा है, बाप के रूप में है, हाथ उठाओ बाप के रूप में, नीचे कर, टीचर के रूप में, कि बाबा मेरा टीचर है, जब भी मैं कंफ्यूज होता हूं बाबा तुरंत समझा देता है, ऐसा अनुभव होता है, अनुभव करके देखा कभी? बाबा सतगुरु है, कभी मेरे मन में कंफ्यूजन मनमत परमत आ रही होती है, हजार तरह की बातें आ रही होती हैं, बाबा एकदम श्रीमत दे देता है, बुद्धि में टच कर देता है सतगुरु के रूप में, ऐसा महसूस होता है कभी? उसको यूज करके देखा है कभी? बंधु के रूप में यूज करके देखा है? बंधु माना बड़ा भाई या बड़ी बहन, हमारा लौकिक में बड़ा भाई बड़ी बहन होती है ना, उसको हम बंधु कहते हैं। कभी बाबा को बड़ा भाई बना के देखा है? बड़ा भाई क्या करता है? हम स्कूल में छोटे बच्चे थे ना, तो हमारा बड़ा भाई क्या करता है, बड़ी बहन क्या करती है? हमारा बैग होता ना, छोटे बच्चे थे नर्सरी में या KG में जाते थे या पहली क्लास में, वो हमारा बैग ले लेंगे, भाई मेरे को अपना बैग दे देना, स्कूल में जाकर तेरे को दे देंगे वापस, तो हमारा सारा बोझ उठा लेता है बड़ा भाई बड़ी बहन। कभी सखा के रूप में बाबा को यूज करके देखा है? उसके अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। दोस्त के रूप में अपने मन की सब बातें सुनानी आती हैं, जैसे कल बाबा ने कहा अपना पूरा पोता मेल बाबा को दे दो सोने के पहले, अपनी बुद्धि को मन को खाली करके बाबा के साथ सो जाओ, तो हम दोस्त के रूप में बाबा को सारी बातें बताते हैं, पूरा का पूरा समाचार देखते हैं, अच्छा बुरा सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी किया मन में, कुछ हुआ ऊपर नीचे, शरीर में कुछ ऊपर नीचे हुआ, परिवार में कुछ नीचे ऊपर हुआ, या सेवा में कुछ ऊपर नीचे हुआ, बाबा को एक एक समाचार दोस्त के रूप में देते हैं, माता पिता के रूप में नहीं देते हैं। माता पिता से अपने मन की बातें शेयर करना कभी मुश्किल लगता है, टीचर से भी कभी कभी मुश्किल लगता है, कभी सतगुरु से भी मुश्किल लग सकता है। फिर तो दोस्त के रूप में बड़े भाई बहन को भी शेयर नहीं कर सकते, पर दोस्त को हर बात शेयर कर सकते हैं, है ना, कर सकते नहीं कर सकते। फिर साजन के रूप में बाबा को यूज करके देखा, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने, बाबा मेरा साजन है, साजन के रूप में मुझे सजा रहा है, दैवी गुण सजा रहा है, ऐसा महसूस होता है कभी? यस, कि बाबा 36 गुणों से मुझे सजा रहा है, 36 दैवी गुणों से बाबा ने मुझे सजाया है। बाबा को भी सज्जन के रूप में यूज करके देखा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी हार्ट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, कभी बहुत थक गए हो, तो बाबा को सज्जन के रूप में जिन्होंने यूज करके देखा, हाथ उठाओ जिन्होंने बाबा को सज्जन के रूप में यूज करके देखा। जब चाहे, आधी रात कोई भी नहीं है आपके पास, सिर में दर्द हो गया बड़ी जोर से, क्या करोगे? बाबा को याद करोगे, डॉक्टर को याद करोगे? पेट में दर्द हो गया, हार्ट में दर्द हो गया, आप अकेले हो कमरे में, कोई भी नहीं है आपके साथ, दवाई भी कोई नहीं है आपके पास, कभी यूज किया है? तो मैं आपको कुछ आज एग्जाम्पल के साथ बताऊं, रियल एग्जाम्पल, रियल अनुभव क्या होते हैं, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज किए हैं, बाबा कैसे भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को यूज करके देखा। फिर बाबा को बच्चे के रूप में यूज करके देखा है, बाबा मेरा बच्चा है, प्रैक्टिकल में कि कैसे बाबा बच्चे के रूप में सेवा करता है। तो मुख्य तो नौ संबंध होंगे ना बाबा के साथ, मुख्य माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सज्जन और बच्चा, मुख्य नौ संबंध। ऐसे तो बहुत संबंध है, हर संबंध को आप बाबा के रूप में यूज कर सकते हो, बाबा को ड्राइवर भी बना सकते हो, कपड़े धोने वाला भी बना सकते हो, कुछ भी काम हो, कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें बाबा को साथ ले सकते हो, हर समय बाबा आपके साथ है, हमारे साथ है। तो ये फिर हमने जैसे ज्ञान की गहराई, ड्रामा की गहराई को देखा है कभी? ड्रामा के पट्टे पे बाबा कहता है ड्रामा साक्षी दृष्टा बन के रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ना गलत हो रहा है, ना गलत होने वाला है, अभी तक जो कुछ भी हुआ ड्रामा के अनुसार हो रहा है। तो ड्रामा के ऊपर साक्षी दृष्टा के अनुभव की अथॉरिटी देखा है कि साक्षी होकर के देख रहे हैं, तन में मेरे तकलीफ हो रही है, लगता है अभी जान जा रही है, तो साक्षी होकर देखा है कभी उसको? मन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, परिवार में कुछ हो रहा है, कोई मर गया, किसी की शरीर छोड़े, किसी बहुत सीरियस हो गया है, तो कुछ भी दुनिया में हो गया हो रहा है, उसे साक्षी दृष्टा स्थिति को कभी महसूस करके देखा है? इसको अनुभव, इसकी इसके अनुभव की अथॉरिटी बने है, कुछ भी हो जाए उसमें हम साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव करें, पवित्रता की गहराई के अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। जैसे मुख्य तो पांच बातें, जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते जाते हैं हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है, और पवित्रता के भी पांच छह लेवल की गहराई है, उसकी गहराई को देखा है महसूस करके कि क्या होती है पवित्र, क्या मेरे अंदर इतनी पवित्रता है, और जहां पवित्रता है बाबा साथ है। शांति की गहराई को जाके देखा है, शांति को अनुभव करके देखा है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। रूहानी स्नेह के अनुभव की अथॉरिटी बने हैं, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव की अथॉरिटी बने हैं, आनंद के अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। मतलब ये पांच तो गुण होंगे ना, पवित्रता, शांति, रूहानी स्नेह, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, ये पांच तो गुण हो गए, बेसिक गुण हो गए, और फिर उससे पैदा होने वाली आठ शक्तियां, एक एक शक्ति को के अनुभव की अथॉरिटी बने हम। फिर जब हम सातों गुणों से भरपूर होकर कर्म करते हैं, हम आत्मा जब बाबा से कंबाइंड होकर सातों गुणों से भरपूर होकर कर्म करते हैं, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से बाबा से निरंतर कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, तो हमारे कर्मों में वो 36 गुण दैवी गुण, उसमें 36 गुणों में एक एक गुण को हमने रियल प्रैक्टिकल में हमने उसको अनुभव करके प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहार में लाया है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने। तो ऐसे बहुत सारी जीवन की बात है, क्या 16 कला संपूर्ण स्थिति को अनुभव करके देखा है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति को अनुभव की अथॉरिटी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव किया है कभी, अहिंसा परमो धर्म स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी बने, विधेयी स्थिति, अब जैसे हम कहते हैं ना देही अमान्य स्थिति, देहिमानी स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी की, सारा दिन देश देह में रहते हुए सारा दिन बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन सारा दिन चलता रहे, उसका क्या असर मेरे ऊपर पड़ता है, उसकी गहराई का अनुभव करके देखा है। आत्मन स्थिति में का अनुभव की अथॉरिटी बने है, क्योंकि जो चीज अनुभव में आ जाती है ना वो ऑटोमेटिक हम कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स भी जैसे होते हैं, अभी नया नया MBBS पास किया उसने, अभी हिस्ट्री उसको सारी पेशेंट के बारे में पूरी थ्योरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ गई, पैथोलॉजी आ गई, फार्माकोलॉजी आ गई, मेडिसिन सीख ली, सर्जरी थ्योरिटिकल सीख ली, पर पेशेंट को भी देखना नहीं सीखा है, पेशेंट का इलाज करना सीखा नहीं है, दवाइयां नहीं सीखी है, कौन सी स्थिति में कौन सी दवाई देनी है। पेशेंट हार्ट अटैक का आ गया और भी नया नया डॉक्टर बना है, उसको हार्ट अटैक से इसको ठीक करना नहीं आता है तो घबरा जाएगा ना कि तो उसने मैं दिन रात मान लीजिए मैं जैसे मेरा फील्ड है रात दिन रात हार्ट के पेशेंट्स को डील करता हूं तो मुझे तो हार्ट अटैक से डर नहीं लगता है। अनुभव की अथॉरिटी है कि कितने हजार लाखों पेशेंट्स को ठीक लाखों पेशेंट्स आए उनको देखा है, बहुत शायद समझ लेते हैं कि हार्ट इसकी ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करना है ऐसे ऐसे करना, चाहे वो कितनी भी गहरा कितनी भी खराब स्थिति में उसको हम समझ सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, समझ मरीज को भी सांत्वना दे सकते हैं, उसके रिश्तेदार को भी सांत्वना दे सकते हैं, है ना। जो सर्जन है किसको चोट लग गई, कोई घाव लग गया, कोई चोट लग गई, कोई पूरा खून खून हो रहा है, उसको सर्जरी का अनुभव है, उसको उसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो जो आदमी जिस चीज का स्पेशलिस्ट बन जाता है उसके लिए उस तरह की बीमारी को इलाज करना, या जो भी आपका फील्ड है, इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, गाड़ी खराब हो गई, सड़क पे खराब हो गई, और जिसको गाड़ी ठीक करने का अनुभव है उसके लिए बहुत सहज बात है कि गाड़ी को तुरंत ठीक कर देगा, अनुभव की अथॉरिटी है वो। तो दुनिया में भी अनुभव की अथॉरिटी होते हैं, ऐसे ही हमको भी देहिमानी स्थिति का अनुभव की अथॉरिटी, आत्मानी स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, विदेही स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, अशरीर स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, निराकारी स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, मास्टर बीज रूप स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ सागर ज्ञान सागर में समा जाने के अनुभव की अथॉरिटी, पवित्रता के सागर में समा जाने के अनुभव की अथॉरिटी, शांति के सागर में समाये रहने के अनुभव की अथॉरिटी, ऐसे भिन्न भिन्न हमारी जो अथॉरिटीज हैं, जितना हम उसको गहराई से हम यूज करेंगे, सीखेंगे, उसका प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट बनेंगे, तो हम जब चाहे इसको यूज कर पाएंगे। बाएं हाथ का खेल लगेगा कि तो हमने कभी उसको यूज ही कभी कभी रेयरली करेगा। हम लगभग जो भी बाबा से मुरली की बातें सुनते हैं उसको हम गहराई से हम एक और भी जब चाहे जिस समय एक्चुअली हमें जो बाबा से मुरली सुनते हैं उसमें सब बातें हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसको यूज करना ही होता है। मुरली सुनने के लिए बनी है क्या? मुरली धारण करने के लिए है। बाबा ने आज भी कहा ना ज्ञान की धारणा, मुरली की धारणा करने के लिए हमें मुरली मिली ना, सुनने सुनने सुनाने की चीज मुरली नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, प्रैक्टिकल में कैसे अनुभव की अथॉरिटी बनना है। 7 स्टेप हैं किसी भी चीज का अनुभव की अथॉरिटी बनना, 7 स्टेप हैं। स्पेशली अगर हमें बाबा की मुरली के, क्योंकि मुरली जो साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान का जो, चाहे वो ज्ञान हो, सत्य की गहराई हो, पवित्रता हो, शांति हो, रूहानी स्नेह हो, अतीन्द्रिय सुख आनंद हो, 8 शक्तियां हो, बाबा से एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत के ज्ञान की अथॉरिटी हो, कुछ भी जो भी बातें हैं, जितनी भी हम गहराई हमारी सूक्ष्म वतन के बारे में, परमधाम मूल वतन के बारे में, जिस भी चीज का अनुभव करना चाहें बाबा से, वो मुरली उसका साधन है। मुरली ही श्रीमत है बाबा की, और मुरली में 4 बातें होती हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी अनुभवी हैं कि 4 बातें मुरली में रहती हैं। एक तो आज्ञा होती है बाबा की, आज्ञाएं होती हैं, दूसरा शिक्षा होती है, शिक्षाएं होती हैं, सावधानियां होती हैं, और फरमान होते हैं, 4 बातें होती हैं, और 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान भी होता है, योग भी होता है, धारणा भी होता है, सेवा भी होती है। तो मुरली जिसने, अगर मुरली को जिसने मनन चिंतन करना सीख लिया, मुरली का जिसने सही मायने में मुरली को, मुरली ही साधन है सर्व अनुभव की अथॉरिटी बनने की। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये व्यक्ति अनुभव, कोई भी व्यक्ति अगर बनना चाहता है अनुभव की अथॉरिटी, सत्य के अनुभव की अथॉरिटी, क्योंकि राजयोग क्या चीज है, योग क्या है या मेडिटेशन क्या है, योग माना कनेक्शन, जोड़, योग किससे जोड़, सत्य से जुड़ना, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही योग है। और सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य वो है जो एटर्नल है, अर्थात अविनाशी है, सदा ही है, शाश्वत है, जन्म मरण से परे है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, सत्य कभी जन्म और मरण से परे रहता है। दूसरा, सत्य अपरिवर्तनशील, अनचेंजेबल है, सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। हमारे आज बाबा ने कहा अज्ञान अशांति और दुख का कारण है, क्रोध का कारण आता है। अज्ञान की शक्ति क्या होती है, अव्यक्त इशारे में था ना, अज्ञान की शक्ति क्या है, क्रोध, अशांति। और ज्ञान की शक्ति क्या है, शांति और शांति और प्रेम है ना, अतीन्द्रिय सुख, आनंद। तो ये जो है मुरली जो है, इसकी जो अगर हमें सचमुच इसको हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहली पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, जो बनना चाहते हैं अनुभव की अथॉरिटी, पहले हाथ उठाओ, सब ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, काफी लोग नहीं उठा रहे, जो नहीं बनना चाहते हाथ उठाओ, कुछ लोगों ने दोनों में हाथ नहीं उठाया, लोग कंफ्यूज हैं, इसका मतलब कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, अगर हम सबसे बड़े अनुभव की अथॉरिटी कौन है तो बताओ, ब्रह्मा बाबा। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने अनुभव की अथॉरिटी बनके जीवन बिताया है, इतनी परेशानियां आई, इतने सारे पेपर आए, एक व्यक्ति 10 लोगों को साथ भी लेकर के चलाए, एक साल भी उसको रखना हो उनको तो एक साल भी उसके साथ चला नहीं सकता है। बाबा ने 400 भाई बहनों को साथ में रख करके ऐसे समय भी चलाया, 14 साल अपने साथ रखकर, एक आदमी 10 बच्चों को नहीं चला सकता अपने पास, और वो भी भिन्न भिन्न घरों के बच्चे एक साथ रखा, ऐसा बाबा ने चलाया। तो बाबा जैसे अनुभव की अथॉरिटी, ब्रह्मा बाबा को अगर हम फॉलो करें तो हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। तो पहली पहली जो बात है, अगर हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है तो हमें अंतर्मुखता को अपनाना होगा, अंतर्मुखता के अनुभव की अथॉरिटी बनना पड़ेगा, भयमुखता को छोड़ना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा भयमुखता का साधन कौन सा है बताओ, यस ये है ना, सबके पास है ना, जिनके पास मोबाइल नहीं हाथ उठाओ, सबके पास है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, सबके पास है, जिनके पास मोबाइल है हाथ उठाओ, सबके पास है ना। तो ये अनुभव के सबसे बड़ी जो बाधा है ना अनुभव की अथॉरिटी बनने में, ये है सत्य के अनुभव की अथॉरिटी बनना, क्योंकि राजयोग का मतलब ही सत्य से जुड़ना। सारे दुख की और शांति की जड़, कलह कलेश की जड़, सभी रोगों की जड़ क्या है, क्या है, असत्य। हम आधा कलप असत्य से जुड़े रहे हैं, देह भान से जुड़े रहे हैं, देह अभिमान से जुड़े रहे हैं, देह अभिमान के संबंध संपर्क माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों से जुड़े रहे, दोस्तों से जुड़े रहे, देह अभिमान से पके पदार्थों से जुड़े रहे, जो आज है कल नहीं है, आज आज बहुत अच्छे कल खराब हो जाते हैं, अनस्टेबल है, इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। और देह विमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से आधा कल्प से जुड़े हुए हैं, और 5 आसुरी स्वभाव के वश होकर कर्म करते हैं, जो उससे आसुरी संस्कार आसुरी आदतें पैदा हो गई है। 10 आदतें मुख्य, वैसे तो 100 है, क्योंकि एक आदत से भी 10 आदतें और नेगेटिव आदतें और बन जाती हैं, आलस्य एक बहुत बड़ी आसुरी आदत है, अलबेलापन आसुरी आदत है, ब्राह्मणों में भी रहती है ना। दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, शक, निश्चय नहीं, विश्वास नहीं, शक और अनुमान लगाना, चिंता करने की आदत पड़ गई है, ये आसुरी आदत है चिंता करना, डरना, भय एक आसुरी आदत है, हमेशा प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या, द्वेष, ये आसुरी आदतें हैं, असुर ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये देवताई संस्कार नहीं है, जल्दीबाजी करना आसुरी संस्कार नहीं है, कंपैरिजन कंपटीशन करना आसुरी संस्कार नहीं है, देवताई संस्कार नहीं, आसुरी संस्कार है। तो हमारे अंदर ये, इसकी हमें अंदर बस गया है, इसलिए हम दुखी हैं, अशांत हैं। आज भी अगर हम देखें तो उसके जड़ यही है। अभी हमें सत्य से जुड़ना है। सत्य क्या? एबीसीडी सत्य है, बाबा परम सत्य है और मुरली उसकी उसकी मुरली परम सत्य है। तो बाबा से और मुरली से जुड़े रहे तो इसी को राजयोग कहते हैं। और उसमें जुड़ने का साधन है कि अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का अर्थ क्या है? अंदर अंतर्मुखता का मतलब मुझे इसी बात से दादी जी की एक बात याद आती है, बड़ी दादी जी की, दादी प्रकाशमणि जी की बात याद आती है कि दादी जी, दादी के पास जब मैं माउंट आबू में जब 95 में आ गए हम लोग हॉस्पिटल में, तो उस समय दादी जी ने पांचवें दिन ही मुझे कहा था कि गुप्ता जी मुरली के बाद जरूर पांच सात मिनट तो मेरे पास आके बैठना ही है आपको रोज। तो दादी के पास रोज जाना होता था, कभी 15 मिनट आधा घंटा ही बैठ जाते थे दादी के पास। दादी जब अकेले में होती थी तब सब मिल लेते थे दादी से, तो दादी उसे कोई ना कोई बात सिखाती थी। तो दादी ने एक दिन कहा, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? तो मैंने कहा, दादी इंचार्ज मैंने हेड द डिपार्टमेंट, जैसे मधुबन में उस समय भी 40 डिपार्टमेंट थे, तो दादी हरेक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज है ना, तो ऐसे इंचार्ज हुआ। दादी ने कहा इंचार्ज वैसे उसका रियल मीनिंग क्या है? मैंने कहा दादी आप बताओ। तो दादी ने इंचार्ज माना जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, शिव बाबा से पावर हाउस से चार्ज करता रहे, अंदर रह के, इन माना अंदर रह करके अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता से अपने आप को निरंतर चार्ज करता रहे, अपने बुद्धि को, अपने मन को, संस्कारों को, आंखों को, नाक कान मुख को और शरीर के एक एक कोशिका को, एक एक अंग को परमात्मा जो पावर हाउस सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं, ज्ञान का, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का, उससे भरपूर करता रहे आत्मा को, अपने आप को लाइट हाउस माइट हाउस बना दे, बुद्धि को लाइट हाउस माइट हाउस बना दे, सातों गुणों से बुद्धि को सत्व प्रधान बना दे, मन को सत्व प्रधान बना दे, संस्कारों को सत्व प्रधान बना दे, आंखों को सत्व प्रधान बना दे, आंखों में सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भर जाएं, कानों में सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भर जाएं, मुख में भर जाएं, रोम रोम में भर जाएं, और अपने एक एक अंग को भी वो एनर्जी देता रहे, और जो भी उसके संबंध संपर्क में आए, उसके डिपार्टमेंट के भाई बहने, उनको भी सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा की बैटरी चार्ज करता रहे, उसको कहते हैं इंचार्ज। और जो आंख दिखा करके गुस्सा करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो है आउट चार्ज। तो हमें क्या बनना है, इंचार्ज क्या आउट चार्ज? दादी ने कहा चलो आप इंचार्ज नहीं हो, कोई मान लो कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज नहीं है, अपने तो इंचार्ज है ना, हर आदमी अपना तो इंचार्ज है, अपनी बुद्धि के, अपने मन का, अपने संस्कारों का तो इंचार्ज है, अपनी आंखों का तो इंचार्ज है। तो अंतर्मुखता और इंचार्ज एक ही बात है, अपने अंदर रह करके, अंदर में जो मैं आत्मा हूं, परमात्मा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से, बाबा ही मेरा संसार है, उससे कंबाइंड होकर सोचना, उससे कंबाइंड होकर निर्णय करना, बाबा से कंबाइंड होकर देखना, कुछ भी देखना है बाबा से कंबाइंड होकर देखना, कुछ भी पढ़ना है, मुरली पढ़नी है, कुछ और भी पढ़ना है, तो बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ना, बाबा से कंबाइंड होकर किसी की बात सुननी है, बाबा से कंबाइंड होकर सुनना, श्वास भी बाबा की याद में कंबाइंड, बाबा से कंबाइंड होकर श्वास लेना, बाबा से कंबाइंड होकर बोलना, बाबा से कंबाइंड होकर कुछ भी पीना है, पानी पीना है, दूध पीना है, तो बाबा से कंबाइंड होकर पीना, भोजन ग्रहण करना बाबा से कंबाइंड होकर भोजन ग्रहण करना, बाबा से कंबाइंड होके हाथों से कर्म करना, बाबा से कंबाइंड होके चलना, किसी से व्यवहार में आना है बातचीत करनी है, किसी से मिलना जुलना है तो बाबा से कंबाइंड होके उससे व्यवहार में आना, इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। तो हमें ध्यान रखना है, अगर सचमुच हम अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहते हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा, पहले अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। और ये अंदर का सुख जिसने इसको लेना आ गया ना, हर समय अंदर का सुख लेना आ गया, हर चीज बाबा से कंबाइंड होकर बात करनी आ गई, हर चीज से बाबा से कंबाइंड होकर उसको रहना आ गया, उसको अपने आप बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है। जिसको अंदर का सुख लेना आ गया ना, उसको बात बाहर का सुख, देखने का सुख, सूंघने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, पीने का सुख, छूने का सुख, लोगों से बातचीत करने का सुख, ये सुख अल्पकाल का सुख है, क्षणभंगुर सुख है, कागविष्ठा के समान कहते हैं सन्यासी लोग, उसके बाद दुखी दुख है। बल्कि हमने एक रिसर्च अभी अपनी जो हम जो पिछले 27 साल से हार्ट की रिसर्च कर रहे हैं, हार्ट की डायबिटीज की, मोटापे पे जो हम लोग देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, मोटा और बीमारियों को बिना ही दवाइयों के रिवर्स कर देना, खत्म कर देना, ब्लॉकेजेस खुल जाना, डायबिटीज खत्म हो जाना, मोटापा ठीक हो जाना, फैटी लिवर ठीक हो जाना, या और भी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाना, मन और तन के लगभग सभी बीमारी राजयोग से ठीक हो सकती हैं, वो प्रैक्टिकल हम उसके प्रयोग कर रहे हैं। तो वो जो है अंतर्मुखता के द्वारा उसको हम अंदर जाकर के ठीक कर, अंदर अंतर्मुखता गुफा में जाकर ठीक कर सकते हैं। तो अंतर्मुखता गुफा से जब आप अंदर से सुख लेने लगेंगे तो आप देखेंगे आपका अपने आप ही जो भी चीजें हैं उससे आपका अपने आप ही डिटैच होता है, भेद का वैराग्य, माना ना वैर ना राग, ना कोई वस्तु से वैर, ना किसी व्यक्ति से वस्तु से वैर है ना राग है। हम भले यूज करते हैं चीज को, ना उससे अटैचमेंट नहीं है, तो बेहद का वैराग्य वृत्ति आने लगती है, उससे अनासक्त वृत्ति आने लगती है, उससे फिर उपराम वृत्ति होने लगती है, और उपराम वृत्ति होने लगते से एकांतवासी बनने लगते हैं, मन और बुद्धि ऊपर जाने लगता है, बाबा से जुड़ने लगता है, और जब एकांतवासी बनने लगते हैं तो एकाग्रता आने लगती है, एक ही बुद्धि में अग्र रहने लगता है बस बाबा, क्योंकि पावर हाउस वही है, बैटरी वहीं से चार्ज हो सकती है और कहीं से बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। जब एक ना जब एक आकर्ता आने लगता तो एक नामी आने लगती है, एक नामी आती है तो वैर से इकोनॉमी आने लगती है, और फिर एकता एकमत होने लगते हैं, फिर एकता और एकरस स्थिति आने लगती है। तो ये जो 14 बातें हैं ना टोटल, पहली जो विशेष 14 बातें हैं, 14 या 10 कहें, 10 बात, ये 10 बातें मैंने आपको बताई, ये 10 बातें जिसके अंदर आ गई ना वो अनुभव की अथॉरिटी बन सकता है। जब इसने भेद की वैराग्य वृत्ति आ गई और जिसने एक रस स्थिति आने लगी, अंदर से सुख मिलने लगा, अब वो व्यक्ति का देह भान, देह अपने देह, मन, धन और संबंध संपर्क, चार चीजें हैं जिसमें हमारा बुद्धियोग अटका रहता है। एक तो अपने शरीर से बहुत बुद्धियोग लग रहता है, बुद्धि और मन हमेशा देह और देह की दुनिया के, देह और देह के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत थोड़ी कुछ हो जाए तो अंदर चिंतन चलता है, उससे योग लगा ही रहता है। मन में भी जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो वृत्ति होती है, स्मृति होती है, उससे हमारा ऑटोमेटिक कनेक्शन रहता ही है। धन से भी बहुत गहरा कनेक्शन होता है और संबंध संपर्क में बुद्धि लगी रहती है। तब जब ये अंदर का सुख मिलने लगता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है, तो जाकर के हम तन मन धन और संबंध और संपर्क का समर्पण कर सकते हैं बाबा को। ये ब्रह्मा बाबा के स्टेप्स हैं एक्चुअली। पहला स्टेप जो दादा विश्वोत्तम बताते थे, क्योंकि दादा विश्वोत्तम बाबा से बहुत नजदीक थे, बहुत नजदीक रहते थे, बाबा को बहुत क्लोज से देखते थे, बाबा को बहुत क्लोज से फॉलो करते थे, तो दादा बताते थे कैसे ब्रह्मा बाबा का पहला पुरुषार्थ ही था अंतर्मुखता। रोज रात को चेकिंग करते थे, 32 की डायरी में बाबा देखो देखो, तो बाबा रोज दरबार लगाते थे मन बुद्धि संस्कार की, और दरबार लाके बाबा मन बुद्धि संस्कार से बात करते थे, अपनी आंखों से बात करते थे, कान नाक मुख से बात करते थे कि क्या समाचार, आज क्या क्या किया, कैसे कैसे कार्य किया, रोज दरबार लगाते थे। फिर बाबा के अंदर वेद की वैराग्य वृत्ति, जब विनाश का साक्षात्कार किया 1934 में तो बाबा को वेद की वैराग्य वृत्ति आ गई। फिर 36 में जब बाबा की पधरामणी हो गई तो बाबा को, बाबा ने तुरंत तन मन धन और संबंध संपर्क का एकदम समर्पण कर दिया। तन को बाबा की अमानत के समझ रूप में यूज किया, मन को भी बाबा की अमानत, धन को भी, धन भी बाबा को दे दिया ट्रस्ट बना के, बाबा की एक बनाकर के स्मृति बनाकर के बाबा ने पूरा धन उनको उनके हवाले कर दिया और संबंध संपर्क को भी उस दिन से ही हवाले कर दिया। फिर कभी यशोदा को अपनी युगल नहीं समझा, बच्चों को बेटा या बेटी को लौकिक बेटे बेटे के रूप में नहीं देखा और उनको अंदर भी वो भावना आ गई, तब योग लगना शुरू हुआ। और जब योग लगना शुरू हुआ बाबा से, क्योंकि जैसे बुद्धि डिटैच हुई चारों से तो बाबा से कनेक्शन जुड़ गया, निरंतर बाबा से कंबाइंड रहने लगे। और जब बाबा से तो अंदर से फिर सामने पेपर आने शुरू हो गए, संबंधियों से, शरीर से, जिनसे जिनमें बाबा की बहुत इज्जत थी उनको सामने बहुत सारे पेपर आने लगे, टिकटिंग हुई, लाखा वहां आग लगाई गई, कितनी सारी बातें हुई, अखबारों में इतनी बातें आई, कोर्ट केस हुआ, फिर भारत में आए बैगरी पार्ट चला, तो कितने सारे पेपर्स आए। पर उसमें जब बाबा, जब अंदर से जब बाबा के साथ जब योग लगना शुरू होता है, कनेक्शन हो जाता है, तो फिर अंदर से बाबा साथ देता है, दृढ़ता आती है, सहनशीलता आती है। इतने बड़े पेपर पास हो गए और जरा भी कुछ भी बाल भाका नहीं हुआ, कहते ना बिल्ली के पुंगरे आग की भट्टी में से भी सुरक्षित निकल आए, कुछ भी नहीं हुआ। और जब ऐसा होता है तो ईश्वरीय फकूर आ जाता है, रूहानी फकूर आ जाता है, रूहानी फकूर आता है तो बेफिक्र बादशाह बन जाता है, और जब बेफिक्र बादशाह बनता है तो फिर मैंपन और मेरेपन का त्याग होता है। तन मन धन संबंध संपर्क को छोड़ने के बाद फिर योग लगना शुरू होता है, उससे आपके अंदर सहनशीलता आती है, सहन करके ठंडा रहना, अंदर से शील रहना, सहन करके समाने की शक्ति आ जाना, तब जाके आपके अंदर क्या आता है, ईश्वरीय फकूर बेफिक्र बादशाह आती है। जब आदमी बेफिक्र हो जाता है, बाबा हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, तब जाकर के मैंपन और मेरेपन का समर्पण होता है, त्याग होता है, जिसको सर्वस्व त्यागी कहते हैं। जब सर्वस्व त्यागी बनते तो निराकारी अवस्था बनती है, जब निराकारी बनके निराकारी बाप की याद में रहने लगते हैं तो विक्रम विनाश होने लगते हैं, निर्विकारी बनते हैं। जब निर्विकारी बनते हैं तो फिर बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा होती है, जब बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा होती है, सारे विश्व की हर आत्मा की सेवा होती है, तब निरंकार स्थिति बनती है। तो कहते हैं त्याग तपस्या सेवा, तो निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ये बाबा का छठा स्टेप त्याग तपस्या सेवा, और सातवां स्टेप कौन सा था, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, और लास्ट में फिर एक सेकेंड में नष्ट हुआ स्मृति लुप्ता, बाबा एकदम उड़ गए एक सेकेंड में। तो ये 8 कदम जो ब्रह्मा बाबा के अपने कदम थे, अगर हम भी उन स्टेप्स पे चले तब हमारे अंदर क्या होगा, तब जैसे ब्रह्मा बाबा अनुभव की अथॉरिटी बन के रहे यज्ञ में, एक एग्जाम्पल बने सबके लिए, तब हम भी बाबा के समान ऐसे बन सकते हैं। तो अब देखिए हम 7 स्टेप कौन से वाले हैं, ये तो हो गए 8 बातें जो हमारे हम हर ब्राह्मण में होनी चाहिए, अंतर्मुखता, वेद की वैराग्य वृत्ति, तन मन धन और संबंध संपर्क का समर्पण, तब योग लगना शुरू होगा। अगर मेरा तन, ये तन बाबा की अमानत है, मन बाबा की अमानत है, धन बाबा की अमानत है, बिना बाबा से पूछे खर्च नहीं करना है, बाबा की राय लेके खर्च करना है, संबंध संपर्क बाबा के है, ये बच्चा बाबा का है, ये युगल बाबा की है, ये माँ बाबा की है, मतलब जो भी संबंध संपर्क है बाबा का है, मेरा नहीं, मैं तो उनकी, मेरे को उनके फर्ज है, उनके प्रति फर्ज है। फिर सहनशीलता, सहन हर बात में सहन करके समाना, फिर ईश्वरीय फकूर बेफिक्र बादशाह, फिर त्याग तपस्या सेवा, फिर निराकारी निर्विकारी निर्विकारी निरंकारी, और लास्ट में कौन सा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध। तो 8 स्टेप अगर जिसने आ गए जिसको करने, अब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, अनुभव की अथॉरिटी बन सकता है। अब अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होते। और हमारा, हम क्या चाहते हैं, हमारा पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाए। अनुभव की अथॉरिटी बनना माना हम पुराने विकारी जो चीजें थी, देह भान देह विमान के अनुभव की अथॉरिटी तो है, वो हमारा स्वभाव संस्कार नेचुरल नेचर बन गया है। अब उसको बदल के हमें जो बाबा ने सिखाया उसके अनुभव की हमें क्या बनना है, उसको हमें नेचुरल नेचर बनाना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज जो है, पहला स्टेप है, मुरली को पढ़ना या मुरली को सुनना, पहला स्टेप। मुरली सत्य है तो कहते हैं इसको कहेंगे अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, या कहें रीडिंग और लिसनिंग टू द मुरली, है ना। सत्य को बहुत गहराई से समझना, सुनना, पढ़ना। दूसरा स्टेप है उसको मन ही मन में रिवाइज करना। दूसरा स्टेप, गहराई से उसको मन में, दिल को सच्चा और साफ बना करके, दिल सच्ची जो दिल में होता है ना हमारे, उसकी बात बार बार याद आती है। अब मां अगर दिल में है मेरे, तो मां की कई बात, मां शरीर छोड़ने के बाद उसकी बातें बार बार याद आती है, मां ने मुझे ऐसा कहा था, मां ने मेरे को ऐसा कहा था, जो दिल में होता है उसकी बात अपने आप याद आती है। तो देखो मेरे दिल में बाबा है या कोई और है, अगर मेरे दिल में बाबा है तो बाबा की मुरली अपने आप याद आएगी, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने क्या वरदान दिया, बाबा ने क्या स्लोगन दिया, आज क्या व्यक्ति इशारा क्या था, अंदर अंदर बार बार बजेगा। तो बाबा की जो बातें हैं उनको दिल ही दिल में रिवाइज करना। तीसरा स्टेप है रियलाइजिंग द ट्रूथ, जो बाबा ने सुबह मुझे समझाया, मुरली में पढ़ाया, क्या उसको सच्चे दिल से मैंने महसूस किया, हाँ मुझे ऐसा बनना है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, तुमको क्या होना चाहिए, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं, तो नशा है ये वाला, ये अंदर से सच्चे दिल से महसूस किया, सचमुच मेरा बाप कौन, क्या बना रहा है वो, मुझे किसके लायक बना रहा है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग आने वाला, सोने की दुनिया, हीरे जवाहरात की दुनिया का मुझे मालिक बना रहा है, इसको अंदर से महसूस कर रहे हो, सच्चे दिल से महसूस कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो। सुबह से कितनी देर महसूस किया इस बात को, बार बार रिवाइज किया, दिल ही दिल में महसूस किया कि बाबा आप तो मुझे सत्य के लिए, पर मैं इसके लिए इतना लायक बना हूं क्या, क्या मैं सर्वगुण संपन्न बना हूं उसके लायक, संपूर्ण निर्विकारी, मतलब मैं सोलाकला संपूर्ण, मेरे 36 के 36 गुण मेरे अंदर आ गए हैं क्या, क्या हर गुण में 100% माना 16 कला संपूर्ण बन गया हूं, क्या मैं संपूर्ण निर्विकारी बन गया हूं, उसके जो बाल बच्चे जो विकारों के बच्चे हैं अंश भी हैं, चिंता भय के रूप में है, जल्दबाजी के रूप में, ईर्ष्या द्वेष के रूप में, क्या मेरे अंदर है तो नहीं, कहीं अंदर किसी के अवगुण तो मुझे नजर नहीं आते हैं, किसी से बदलने की भावना तो नहीं है, आलस्य अलबेलापन तो नहीं है, चेक करो, क्योंकि जब मैं रियलाइज करूंगा तो मुझे सामने अपनी कमी कमजोरी भी नजर आती है कि ये मेरे रास्ते में बाधा है, ये 36 गुण आने में मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये गुण मेरे अंदर सिर्फ 10% ही है, ये सिर्फ 15% ही है, 20% ही है, बनना 100% है, और मैं सिर्फ बना अभी तक 20% हूं, 25% बना हूं, तो अभी तो लायक नहीं बना हूं ना, तब तो लगन लगेगी ना, मुझे बनना है और मेरे अंदर इतनी कमी है, तो रियलाइजेशन में दोनों बातें आएंगी ना, आएंगी, मंजिल भी दिखाई देगी और मैं कितना बन गया हूं ये भी तो मुझे चेक होगा ना, नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य को अच्छे से समझो, कैसे मुरली कैसे सुननी चाहिए, मुरली सुनने के लिए, अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए मुरली को कैसे, जैसे हम जाते हैं गॉडलीवुड में जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, साउंड प्रूफ रूम होता है, स्टूडियो साउंड प्रूफ होता है, लाइट्स होती हैं बकायदा, और बकायदा उसमें एक्यूरेट एकदम एक जो हमारा स्टेप होता है, बोलने का तरीका हमारा, बोलने का ढंग, वो जो हम बात कहते हैं साफ लोगों को सुनाई दे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे ऐसे वायुमंडल में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तब पीस ऑफ माइंड पे वो चीज आएगी, अवेकनिंग टीवी पे आती है या और चैनल्स पे बातें जाती हैं। ऐसे ही जो हमारी क्लासरूम है ना, जो या डायमंड हॉल है या आपका सेंटर जो है, जो भी सेंटर है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वो रिकॉर्डिंग रूम्स हैं, वो स्टूडियो है, वहां जाकर के बैठ के बस। और वहां भी बैठकर कैसे, कोई भी भाई बहन मुरली सुना रहा है, जैसे गीता पाठशाला में आप, वहां भी बस अपने मन बुद्धि मन रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन बाप दादा गोद में चले जाओ, बस बाबा की गोद में मैं हूं और बाबा मुझे गोद में बिठा के मुरली सुना रहा है। ये है मुरली सुनने की विधि। सूक्ष्म वतन वो स्टूडियो है जहां बैठ के बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनी जाती है। हम लोग ऐसे मुरली सुनते हैं, टोटल एब्जॉर्ब, टोटल मन बुद्धि उसमें लगी हुई है, बाबा सुना रहा है, बहन जी सुना, कोई भी दीदी सुना रही है, दादी सुना रही है, हम बस बाबा के पास हैं सूक्ष्म वतन में, बाबा सुना रहा है, अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तब मुरली दिल में जाती है और तब मुरली अंदर से बार बार बजती है, तब रिवाइज होती है, तब रियलाइज होती है, बाबा ने मुझे ये कहा था, बाबा ने मुझे ये कहा था। तब तीसरा स्टेप होता है, जब अंदर से महसूस होने लगता है कि बाबा ने मुझे कहा मुझे ऐसा बनना है, बाबा ने कहा मुझे ऐसा बनना है, बाबा ने कहा मुझे आज बाबा ने वरदान दिया ऐसा ऐसा करना है, दिलाराम है ना, मुझे कौन बन रहा है, सबके दिलों को आराम देने वाला कौन बन रहा है ना, जब मुझे बार बार ऐसा आज मम्मा ने ऐसा बोला है ना, तो मुझे एक एक बात अंदर से फील होती है, मैं मास्टर दिलाराम बनाऊं, लोगों के दिल को आराम 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 दिया, किसके दिल दुख तो नहीं दिया, किसी कड़वा तो नहीं बोला, किससे नफरत तो नहीं की, घृणा तो नहीं की, अंदर से फील होता है। तो सच्चे दिल की महसूसता, रियलाइजिंग द ट्रूथ, जब सच्चे दिल से महसूस करने लगते हैं तो क्या होता है, फिर अंदर से एक्सपीरियंस होता है, फिर अनुभव होता है। जब कर्म में लाते हैं ना तो अनुभव होता है, बिना कर्म में लाए अनुभव नहीं होता है। जब तक मैंने महसूस तो कर लिया, और महसूस करने के बाद मैं जब कर्म में, जब कर्म करते हुए पेशेंट देखते हुए आईसीयू में पेशेंट देख रहा हूं, पेशेंट की तबीयत खराब है, पेशेंट एकदम लग रहा है डॉक्टर साहब मैं मरने वाला हूं, मेरी ऐसी हालत खराब है ऐसी नहीं, बहुत प्यार से, रूहानी प्यार से, उसके उस प्यार को, रूहानी प्यार को यूज करते हुए, मन की वो अशांत वाता वायुमंडल है उसमें शांति को बाबा से कंबाइंड होकर शांति के वाइब्रेशन के साथ प्रैक्टिकल उसको यूज करना, उसको यूज करके उसको उस आत्मा को देना, वो प्रैक्टिकल जो अंदर महसूस किया, रियलाइज किया, पवित्रता को, शांति को, प्रेम को, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति को, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति को, तब मैं उसको प्रैक्टिकल में लाता हूं तो अंदर रिकॉर्ड होता है। बिना कर्म के रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मैंने बहुत अच्छा अमृत वेला किया और जैसे ही मैं कार्य व्यवहार में आया, देह विमान में डॉक्टर बन के गया, हॉस्पिटल में देह विमान में डॉक्टर हूं मैंने जो कहा आप समझ लो, बस उसमें कोई रूहानियत नहीं मेरे अंदर, तो अंदर जाएगा नहीं, मेरे अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। भले मैं 4 घंटा अमृत वेला करके जाऊं, सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक योगी करता रहूं, 4 से 10 बजे तक योगी करता रहूं, क्योंकि डॉक्टर बनते ही मैं क्या हुआ, एकदम डॉक्टर रोल कॉन्शियस बना और सारा सारा बेकार हो गया, कोई अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकता। कर्म करते हुए उस स्थिति को उसमें विदेही स्थिति में रहकर कर्म करना, आत्मानी स्थिति में रहकर कर्म करना, देहीमानी स्थिति में रहकर कर्म करना, तब रिकॉर्डिंग होती है, तब अनुभव की अथॉरिटी बनता है, तब कर्म में आता है। और जब अनुभव की अथॉरिटी, तब फिर एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, फिर बिकमिंग द ट्रूथ, जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो हम बिकमिंग द ट्रूथ माना, हम सत्य बनने लगते हैं। प्रैक्टिकल पवित्रता, शांति, प्यार हमारे व्यवहार में आने लगती है, फिर अल्टीमेटली हम क्या बन जाते हैं, बीइंग द ट्रूथ, सत्य बन जाते हैं। वो सत्य बन जाते हैं ना, तो 7वां स्टेप है लिविंग द ट्रूथ, हमारा जीवन ही सत्य बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन सत्य था, मम्मा का जीवन सत्य था, दादी जानकी जी का जीवन, दादी प्रकाशमणि जी का जीवन सत्य था, दादी जानकी जी का जीवन सत्य था, सत्य के एम्बॉडीमेंट थे वो, दादी गुलजार जी का जीवन सत्य था, अब दादी हमारी रतनमणि जी का जीवन सत्य है, आप जाओ देखो कैसे दादियां उपराम है, देह अब देह के भान से उपराम, आश्चर्य स्थिति क्या होती है, विदेही स्थिति क्या होती है, प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट है वो, बुखार है उनको 102 शरीर को बुखार है पर वो बुखार से उपराम है, फेफड़े में निमोनिया हो गया है पर वो निमोनिया से उपराम है, जरा भी कुछ नहीं, कोई मतलब कोई बात ही नहीं है, उनको चेहरे पे कोई फीलिंग ही नहीं है, मुस्कुरा रही है, प्रैक्टिकल अनुभव के तो ये 7 स्टेप है। पहला अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, दूसरा क्या रिवाइजिंग द ट्रूथ, मुरली का मनन दिली दिल में मुझको रिवाइज करना, फिर उसको चिंता उसका सच्चे दिल से महसूस करना, रियलाइजिंग द ट्रूथ, फिर एक्सपीरियंस होने लगेगा जब उस कर्म में कर्म करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, फिर हम उसको बिकमिंग द ट्रूथ, माना वो चीज हमारे अंदर आती जाएगी, व्यवहार में आती जाए, लोगों को दिखाई देगा, है ना, लोगों को महसूस होगा, आपसे शांति महसूस होगी, लोगों को आपसे प्यार महसूस होगा, रूहानी प्यार महसूस होगा, लोगों को आपसे अपनापन महसूस होगा, अतिंद्रिय सुख आपके कर्मों में दिखाई देगा, आप खाने पीने के पीछे भागेंगे नहीं, मैं ये खा लूं नहीं, सिंपल वही चीज खाते रहो, कोई हर्जा नहीं है, कोई नई चीज नहीं चाहिए कुछ खाने पीने को, कुछ भी बना हो कुछ भी, मुझे बहुत सिंपल सा बस चाहिए, थोड़ा सा चाहिए बस, कुछ देखने की इच्छा नहीं है, अनासक्त वृत्ति हो जाएगी, फिर बीइंग द ट्रूथ सत्य बन जाएंगे, और फिर बाद में लिविंग द ट्रूथ, माना हम वाइब्रेटिंग द ट्रूथ, हमारे से वाइब्रेशन ट्रूथ सत्य के आत्मिक भान के वाइब्रेशन, जैसे माँ बापा के सामने जाके लोग अपना देह भान भूल जाते थे, जैसे मूर्ति के सामने जाते ना देवता, कलेक्टर भी जाके लेट जाता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी जाके लेट जाते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, मूर्ति बोलती नहीं है, फिर ऑटोमेटिक चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्षता बाबा की होती है। मैं लास्ट में बस यही बात मैं कहूंगा आपको, मुझे भी हार्ट की बीमारी हो गई थी जब मैं यहां पर आया 1995 में, मैं तो हार्ट की रिसर्च करने के लिए आया था कि हार्ट के पेशेंट्स को कैसे बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। नवंबर 96 में मुझे हार्ट की बीमारी हो गई, मेरे को छाती में दर्द हुआ, बहुत घबराहट हुई, ईसीजी खराब हो गया, और उस दिन से मेरे को रात में सोना भी बंद हो गया, मैं बैठे बैठे बैठ सकता था, लेट नहीं सकता था, हार्ट की भी रेगुलर होती थी, तो 3 महीने सोया नहीं था, लगभग बहुत सारे टेस्ट किए, एंजियोग्राफी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था, फिर किसी मेरे दोस्त ने, मुझे यूएस के दोस्त थे आए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बताया आपको हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आपकी हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई है, और आपकी जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है, और आपका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा यूएस में, फिर एक मशीन लगा देंगे, और उसमें भी बहुत खतरा है मरने का। तो दादी जी को मैंने आके बताया, तो दादी ने गुलजा दादी को कहा कि दादी जी को बताया कि दादी जी के बाबा से पूछ के क्या करना है। दादी ने कहा अच्छा, हम यूएस में भेज देंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा दादी, मैं तो लोगों को ऑपरेशन से बचाने के लिए आया था, मैं ऑपरेशन करवा अपना ऑपरेशन करवाने थोड़ा आया था यहाँ पर। तो दादी ने दादी से पूछा, बाबा से मैसेज लाने के लिए कहा, तो बाबा ने कहा बच्चे को, क्योंकि योग को यूज करना है, राजयोग का प्रयोग करना है पेशेंट्स पे, तो उसको अनुभव नहीं है, तो ये बीमारी उसको अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई है, योग का अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई है। और बाबा ने कहा बच्चे को कहो 1 महीना छुट्टी ले ले हॉस्पिटल से, और बहुत योग करे, और 1 महीने के बाद मुझे रिपोर्ट करे। बाबा को फिर दोबारा बताया कि अब कैसा है। तो मैंने एक मैं छुट्टी ले ली अस्पताल से, और अस्पताल में मैं बैठ करके मैंने शुरू किया, अभ्यास शुरू किया, और मैंने घंटे घंटे याद का चार्ट बनाया, और मैंने देखो 10-10, 11-11 घंटे का याद का चार्ट, 8 घंटे से भी ज्यादा चला गया, 11-11 घंटा योग किया, और तो भी मेरे को हार्ट की दर्द ठीक ना हो, मेरी हार्ट बीट रेगुलर तब भी रेगुलर रहती थी, रात को सो नहीं सकता था, ये महीना भर बीत गया, दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर दादी के पास आया वापस, दादी को दादी मेरे को तो दादी ने पूछा, मैं दादी को अपना चार्ट दिखाया, घंटे घंटे याद का चार्ट दिखाया, दादी देखो मैं सारा कुछ छोड़ के सारा दिन रात एक ही काम करता हूँ, बस बाबा को याद करता हूँ, सारा दिन कमेंट्री से करता हूँ, तो मैं सारा मैंने किया। और उसके बाद बाबा ने कहा, फिर अगले दिन फिर दादी ने फिर बाबा का मैसेज लेने गई, और फिर बाबा ने दादी ने मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर दादी ने कहा बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे की विधि गलत है, जो बाबा ने विधि सिखाई ना, विधि से सिद्धि होती है, तो बच्चे को अपना बच्चे पूरी कर्म कहने लिखे, और रिवाइज और रियलाइज, दिल को सच्चा साफ बना के लिख लिख के सारे मन को खाली करे, और फिर अपने एक एक बात को रिवाइज रियलाइज करेंगे, तब जाके मैंने देखा सिर्फ 3 दिन में ही मेरे हार्ट की दर्द भी ठीक हो गई, हार्ट बीट भी रेगुलर हो गई, और मैं 3 दिन सो भी गया, 4 महीने के बाद सो पाया। तो ये अनुभव की अथॉरिटी बनना, कैसे अनुभव की अथॉरिटी बनने, तो इसके आप अभ्यास करें, सही विधि से करें, तो एक्यूरेट हम कर पाएंगे। चलिए हम एक मिनट बाबा को याद करते हैं, उसके बाद फिर हमारे राजू भाई जी आने वाले, आदरणीय अच्छा आ चुके हैं, फिर उनसे भी सुनेंगे, चलते हैं बाबा के पास। चलिए फिर दोबारा से हम देव और देह की दुनिया से मन बुद्धि को डिटैच कर लीजिए, अशरीर स्थिति के हम अनुभव की अथॉरिटी बने, परमधाम घर में अशरीर आपसे कंबाइंड हो जाए।